जाह्नवी की बात सुनकर पृथ्वी का दिमाग खराब हो गया। उसने जाह्नवी से कहा, पागल हो गई हो क्या? पृथ्वी रायचंद नाम है मेरा, मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक गलती मेरी नहीं है। जाह्नवी ने कहा, गलती तुम्हारी ही है, तुमने इन बच्चों को डांटा है, अब चुपचाप उनसे माफ़ी मांगो तभी मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगी। पृथ्वी अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ जाह्नवी, चुपचाप गाड़ी में बैठो, हमें निकलना है, तुम्हारी इस नॉनसेंस बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। पृथ्वी ने अपना सर पीट लिया और कहा, ठीक है, तुम मत आओ मेरे साथ दिल्ली, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तुम आते रहना पैदल। पृथ्वी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक धूल के झोंके को पीछे छोड़ता हुआ गाड़ी लेकर आगे निकल गया। जाह्नवी मुंह खोले बस पृथ्वी को जाता हुआ देखती रह गई और वो सारे बच्चे जाह्नवी को अकेला वहां खड़ा देखकर फिर उस पर हंसने लगे। जाह्नवी मुंह बनाते हुए उन बच्चों को देखकर बोली, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की और तुम लोग मुझ पर ही हंस रहे हो। तभी उनमें से एक बच्चा आगे आते हुए बोला, अरे दीदी आप फिक्र मत कीजिए, भैया ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप जल्दी से उन्हें पकड़ लेंगी। जाह्नवी ने कहा, कैसे पकड़ूंगी, वो गाड़ी से गया है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी एक दूसरे बच्चे ने कहा, अरे मैंने उनकी पेट्रोल की टंकी खोल दी थी और उसमें से पेट्रोल गिर रहा है, वो देखो। जाह्नवी ने भी देखा, सच में सड़क पर पेट्रोल गिरता हुआ जा रहा था। वो हैरानी से उन बच्चों को देखने लगी तो वो बच्चे अपनी आंखें मारते हुए बोले, अब भैया आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, जाइए जाकर उन्हें पकड़ लीजिए। सच में अब तो जाह्नवी ने खुद अपने मुंह से कहा, आजकल के बच्चे बच्चे नहीं पाप पैदा हो रहे हैं। जाह्नवी तेज कदमों से आगे गई और उस बहते हुए पेट्रोल को देखने लगी। वैसे भी उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम था, ऊपर से जो बचा पेट्रोल था वो इन बच्चों की शरारत की वजह से जमीन में बह रहा था। जाह्नवी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, वो 5 मिनट ही चली थी कि सामने पृथ्वी की गाड़ी बंद पड़ी थी और वो परेशानी से अपनी गाड़ी को देख रहा था। पृथ्वी को ऐसा देखते ही जाह्नवी को हंसी आ गई। वो तेज तेज कदमों से पृथ्वी के पास आई और उसके जीप के ऊपर एक कोहनी रखते हुए बोली, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? पृथ्वी ने घूरते हुए जाह्नवी को देखकर कहा, पेट्रोल खत्म हो गया है और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि क्या हुआ है, तुम जाओ ना अपने रास्ते, तुम्हें तो पैदल ही दिल्ली जाना है, गाड़ी को कैसे ले जाना है ये मैं देख लूंगा। जाह्नवी हंसते हुए बोली, चलो तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारी एक मदद तो कर ही सकती हूँ। पृथ्वी उस खराब गाड़ी की बोनट को देखते हुए बोला, कैसे करोगी तुम मेरी मदद, पेट्रोल बरसाओगे क्या आसमान से? जाह्नवी बोली, नहीं पेट्रोल तो नहीं बरसा सकती, लेकिन लिफ्ट ले सकती हूँ। तभी जाह्नवी ने देखा पीछे से एक बड़ी सी प्राइवेट बस आ रही थी। जाह्नवी सड़क के बीच में खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए बस को रोकने की कोशिश करने लगी। बस अचानक से रुक गई और जाह्नवी ये देखकर बहुत खुश हुई कि अब उसे लिफ्ट मिल जाएगी। उसने पृथ्वी को देखा। जाह्नवी बस के पास गई और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और एक औरत और आदमी जो शायद हस्बैंड वाइफ थे वो जाह्नवी को हैरानी से देखने लगे। जाह्नवी ने कहा, देखिए हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें दिल्ली तक लिफ्ट दे सकते हैं? उन दोनों ने जाह्नवी को देखकर कहा, हम लोग तो बस मानेसर तक जा रहे हैं। जाह्नवी जल्दी से बोली, हाँ तो हमें मानेसर तक ही छोड़ दीजिए, हम वहां से बस या टैक्सी ले लेंगे। लेकिन उस औरत ने कहा, पर शायद आपको बस में आने न दिया जाए, दरअसल हम सब फैमिली वाले हैं और मानेसर में हमारी कुलदेवी का मंदिर है, हमारे दादा दादी के 75वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर हम दोनों वहां जा रहे हैं और बस में सिर्फ जोड़े ही बैठे हैं, पर आप तो अकेली हैं। जाह्नवी सोचने लगी, तभी उसकी नज़र पृथ्वी पर पड़ी और वो जल्दी से बोली, अरे नहीं मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे पति है ना मेरे साथ, वो है मेरे पति। उन लोगों ने गाड़ी के पास खड़े पृथ्वी को देखा और फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा तो आप शादीशुदा हैं, चलो अच्छी बात है, फिर तो आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं, मैं एक बार दादा और दादी को बात करके आता हूँ। जाह्नवी खुश होते हुए पृथ्वी के पास आई तो पृथ्वी हैरानी से बोला, लिफ्ट के लिए इतनी देर से क्या बात कर रही थी? जाह्नवी गाड़ी की पिछली सीट से अपना बैग निकालते हुए बोली, लिफ्ट मिल गई है, चलो जल्दी चलते हैं। पृथ्वी हैरानी से जाह्नवी को देखता रहा और फिर उसने अपना बैग निकाला और जाह्नवी के पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों बस में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि आगे के 2 सीट के बाद ही 2 बुजुर्ग जोड़े बैठे हुए थे। वो जाह्नवी और पृथ्वी को देखकर मुस्कुरा दिए। सिंघल महल। अमृता ताई अपने कमरे में बैठी बाइबल पढ़ रही थी, तभी उन्हें दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। उन्होंने हैरानी से दरवाजे पर देखा तो वहां पर अरुणिमा खड़ी थी। अरुणिमा को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बाइबल बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए बोली, अरे अरुणिमा तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ। अरुणिमा मुस्कुराते हुए धीरे कदमों से अंदर आई। अमृता ताई ने अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठाया और बोली, क्या हुआ तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो, थोड़ा खुलकर बात किया करो। लेकिन शायद अमृता ताई ने अरुणिमा का हाथ बहुत तेजी से पकड़ लिया था और आस्तिक के दिए घाव की वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा। अरुणिमा के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। अमृता ताई जब ये देखा तो हैरानी से उसका हाथ छोड़ दी और बोली, सॉरी मैंने देखा नहीं। अमृता ताई अरुणिमा के हाथ में उस जख्म को देखती हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अरुणिमा से बोली, ये आस्तिक ने किया है ना। अरुणिमा ने कुछ नहीं कहा बल्कि अपना चेहरा झुकाए वहीं बैठी रही। अमृता ताई गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे नहीं रोकोगी, मुझे लगता है मुझे इस लड़के से बात करनी ही होगी। लेकिन इससे पहले कि वो जाने के लिए मुड़ती, अरुणिमा ने उनका हाथ पकड़कर बहुत ही मिन्नतों के साथ उन्हें देखते हुए कहा, नहीं ताई आप उन्हें कुछ मत कहिए, अगर उन्हें पता चल गया तो वो इससे भी बड़ा कर सकते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए आप उनसे कुछ मत कहिए। अमृता ताई एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, लेकिन कब तक अरुणिमा, तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? और ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अरुणिमा अमृता ताई को वापस अपनी जगह पर बैठाते हुए बोली, मैं आपकी बात पर गौर करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ और बात करने के लिए आई हूँ। अमृता ताई ने कहा, हाँ कहो ना, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे?